मार्गदर्शन।
श्रोताओं, कार्यक्रम मार्गदर्शन की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित है मरियम मेहर दादी और मोहम्मद अली गुम्मी का सलाम स्वीकार कीजिए। आज के कार्यक्रम में सांस्कृतिक संघर्ष पर चर्चा करेंगे।
जिहाद का अर्थ कोशिश करना है और आम बोलचाल में इसका अर्थ है अपनी जान, माल और क्षमता को इस्लाम और उसकी शिक्षाओं के प्रसार में लगाना। आयतुल्लाह उज़्मा सदर खामनाई जिहाद की व्याख्या में कहते हैं, हर वो काम जिसमें कोशिश हो और उसके मुकाबले में एक दुश्मन हो उसे जिहाद कहते हैं। चूँकि इस्लाम और इस्लामी जगत को दुश्मन विभिन्न तरीक़ों से अपने हमलों का निशाना बना रहा है, इसलिए उससे निपटने की शैली भी अलग अलग तरीके की होनी चाहिए। कभी दुश्मन के साथ जंग के मैदान में आमने सामने खड़ा होना पड़ता है, कभी दुश्मन के सांस्कृतिक वर्चस्व को ख़त्म करने या उसके सांस्कृतिक धावे से निपटने के लिए सांस्कृतिक संघर्ष करना पड़ता है।
इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनेई जिहाद के प्रकार की व्याख्या में फरमाते हैं, इस्लामी संस्कृति में एक बिंदु जो इस्लाम के आरंभिक दौर में बहुत उभरा लेकिन बाद के दौर में फीका नज़र आता है, वो संघर्ष की संस्कृति है। जिहाद का अर्थ सिर्फ जंग के मैदान में मौजूद रहना नहीं है, क्योंकि दुश्मन का मुकाबला करने की हर कोशिश को जिहाद कह सकते हैं। अलबत्ता ये भी मुमकिन है कि कुछ लोग कुछ काम करें, काफ़ी मेहनत करें और उसे संघर्ष का नाम दें, ये सही नहीं है, क्योंकि जिहाद की एक शर्त यह है कि उसके मुकाबले में कोई दुश्मन हो। ये मुकाबला कभी जंग के मैदान में हथियार के साथ होता है, जिसे सामरिक संघर्ष कहते हैं, कभी राजनीति के मैदान में होता है, उस वक्त इसे राजनीतिक संघर्ष कहते हैं, कभी सांस्कृतिक मैदान में मुकाबला होता है, उस वक्त उसे सांस्कृतिक संघर्ष कहते हैं, और एक वक्त विकास व तरक्की के क्षेत्र में होता है, उस वक्त उसे निर्माण संघर्ष कहते हैं। जिहाद अलग अलग मैदान में अलग अलग शीर्षक से होता है।
सांस्कृतिक संघर्ष का अर्थ समाज में सही विचार व आस्था को बयान करना और बुरी आस्थाओं व विचारों को ख़त्म करना है। इस संघर्ष में सबसे पहले ज़रूरी है कि समाज से निरक्षरता व अज्ञानता को ख़त्म किया जाए और शुद्ध ईश्वरीय व इस्लामी संस्कृति को पेश करके उसे दूर किया जा सकता है। चूँकि बुरे विचारों का प्रचार व प्रसार किसी समय व स्थान से विशेष नहीं है, इसलिए सांस्कृतिक संघर्ष भी एक निरंतर प्रक्रिया है जिसे सैन्य संघर्ष पर प्राथमिकता हासिल है और ये बुनियाद की हैसियत रखती है।
यही वजह है कि सांस्कृतिक संघर्ष करने वालों की अहमियत सैन्य संघर्ष सहित अन्य क्षेत्रों में संघर्ष करने वालों से ज़्यादा है, क्योंकि वो सही विचारों, नैतिक मूल्यों और ईश्वरीय आदेशों का प्रचार व प्रसार करते हैं। उनके सांस्कृतिक संघर्ष से ईश्वरीय धर्म की रक्षा होती है, धर्म पर होने वाले हमले दूर होते हैं और ईश्वरीय मूल्य पनपते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम का एक स्वर्ण कथन है, प्रलय के दिन ईश्वर सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा करेगा, तराजू व मानदंड रखे जाएंगे और उन पर शहीदों के खून को विद्वानों की रोशनाई से परखा जाएगा। उस समय विद्वानों के कलम की रोशनाई शहीदों के खून से बेहतर करार पाएगी।
इस कथन की व्याख्या में इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता फरमाते हैं कि विद्वान में यह क्षमता होती है कि आज की भाषा में इस नज़र आने वाले ढांचा रूपी इंसान को एक महान इंसान में बदल देता है, एक अटल इरादों वाला। एक विद्वान ये काम कर सकता है। विद्वान का कलम शहीद के खून पर वरीयता रखता है। हमने अपने जवान धार्मिक छात्रों को देखा है जो प्राचारिक जंग के मैदान में एक आम आदमी को प्रतिरोधी, एक सुस्त इंसान को सक्रिय और एक कमज़ोर इरादे के इंसान को अटल इरादे का बना देते थे।
सांस्कृतिक संघर्ष का मुख्य स्तंभ एक विस्तृत सांस्कृतिक संघर्ष के लिए ज़रूरी सभी चीज़ों की तैयारी है और उसके संचालन के लिए एक सांस्कृतिक बेस का वजूद है। इस मुख्य बेस में एक वॉच टावर होता है जिसका काम इस बात पर नज़र रखना होता है कि कोई सांस्कृतिक हमला न करने पाए, हमेशा तैयार रहे, ट्रेनिंग होती रहे, उचित हार्डवेयर उपकरणों की आपूर्ति होती रहे, अपनी फोर्स को मनोवैज्ञानिक कार्रवाई के लिए तैयार किया जाता है। ये सब के सब एक कमांडर का अनुसरण किए बिना मुमकिन नहीं है। वरिष्ठ नेता सांस्कृतिक संघर्ष को व्यवहारिक बनाने के लिए इस्लामी गणतंत्र ईरान की सांस्कृतिक क्रांति की उच्च परिषद को मुख्य बेस के रूप में पहचानवाते हुए फरमाते हैं, हो सकता है कि बेस का शब्द कुछ लोगों को अच्छा न लगे और कहें कि बेस एक सामरिक शब्दावली है, ये सैन्य मामलों के लिए विशेष है, लेकिन सच्चाई ये है कि सांस्कृतिक जंग का मैदान अगर सैन्य संघर्ष के मैदान से ज़्यादा अहम न हो तो उससे कम भी नहीं है।
इंसान जिस मोर्चे पर होता है, सबसे पहले उसके लिए ज़रूरी होता है कि दुश्मन को पहचाने, उसके सैन्य उपकरणों व सुविधाओं को पहचाने ताकि उससे निपट सके। जो दुश्मन को नहीं पहचानता, उससे निपटने के लिए ज़रूरी उपाय नहीं अपना सकता। वरिष्ठ नेता इस बारे में फरमाते हैं कि सांस्कृतिक हमले का बंदूक से जवाब नहीं दिया जा सकता, उसकी बंदूक कलम है। आँख को खुला रखना और मोर्चे को पहचानना उसी तरह ज़रूरी है जिस तरह जंग के मैदान में। अगर कोई व्यक्ति वॉच टावर से दुश्मन की स्थिति को समझे बिना अपनी निगाह नीचे किए आगे चला जाए तो हार जाएगा। सांस्कृतिक जंग भी इसी तरह होती है।
सांस्कृतिक संघर्ष का एक रास्ता धार्मिक आस्थाओं को मजबूत करना है। धार्मिक आस्थाओं को मजबूत करने से इस्लामी समाज में खास तौर पर युवा वर्ग दुश्मन के सांस्कृतिक हमले से सुरक्षित हो जाता है। अलबत्ता धार्मिक विचार उस समय पनपते हैं जब उसके साथ पहचान भी हो, वरना एक व्यक्ति अपनी कमजोर आस्था व पहचान न होने के कारण दुश्मन के प्रचार से धोखा खा जाता है। वरिष्ठ नेता इस उपाय की व्याख्या में कहते हैं, खुद को जागरूक बनाइए, अपने भीतर समीक्षात्मक क्षमता पैदा कीजिए, ऐसी क्षमता जिसके जरिए समाज की वास्तविकताओं को पहचाने। समीक्षा की शक्ति बहुत अहम है। हम मुसलमानों ने पूरे इतिहास में जब भी नुकसान उठाया उसके पीछे कमज़ोर समीक्षा जिम्मेदार थी। इस्लाम के आरंभिक काल में जो नुकसान पहुँचा उसके पीछे भी यही वजह थी।
ऐसा न हो दुश्मन आप में जागरूकता के अभाव से फ़ायदा उठाए और वास्तविकता को उलट पलट कर दिखाए। किसी व्यक्ति या मानव समाज के सामने जो मुश्किलें पैदा होती उसके पीछे इन्हीं दो में से किसी एक का असर होता है, एक जागरूकता का अभाव और दूसरे धैर्य न होना। लापरवाही का शिकार हो जाते हैं और सही बात को समझ नहीं पाते, या सही बात को समझते हैं लेकिन दृढ़ता के अभाव में जल्द हिम्मत हार जाते हैं। समय की ज़रूरत को न समझना और संकीर्णता वे हथकंडे हैं जिसे दुश्मन अपने सांस्कृतिक हमले के लिए इस्तेमाल करता है। यही वजह है कि आयतुल्लाह उज़्मा खामेनाई सभी लोगों और ख़ास तौर पर छात्र वर्ग से अनुशंसा करते हैं कि संकीर्णता से निपटने के लिए ज्ञान हासिल करें और अपने भीतर जागरूकता लाएँ। उनकी नज़र में संकीर्णता एक तरह की संस्कृति है जिसका द्वार बंद है, जिसे सांस्कृतिक शैलियों से निपटा जा सकता है।
दुश्मन के देशों को झुकाने के सबसे बड़े हथकंडों में से एक हीनता की भावना को पैदा करना है। इसलिए सांस्कृतिक संघर्ष को आत्मविश्वास की भावना को बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि दुश्मन की साजिश नाकाम हो जाए। आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली खामेनेई फरमाते हैं कि दुश्मन सांस्कृतिक हमले के लिए सबसे बड़ा हथकंडा अपनाता है कि ये दृष्टिगत समाज की पहचान को निम्न स्तर की दर्शाता है और उसमें निराशा की भावना को फैलाता है। इसी तरह दुश्मन अपनी शक्ति का प्रदर्शन और अपने भौतिक संसाधनों का बखान करता है। वरिष्ठ नेता फरमाते हैं, आज और भविष्य में हजारों सांस्कृतिक उपकरण इसलिए इस्तेमाल होंगे कि मुसलमानों को उज्जवल भविष्य की ओर से निराश करें या उन्हें अपनी बुरी नीयत के अनुसार भविष्य के लिए प्रेरित करें।
यह सांस्कृतिक व मनोवैज्ञानिक जंग साम्राज्य के आरंभ से लेकर अब तक इस्लामी देशों पर वर्चस्व जमाने के लिए साम्राज्य का सबसे प्रभावी हथकंडा रहा है। इस जहरीले तीर का निशाना सबसे पहले बुद्धिजीवियों, विचारकों और फिर आम लोगों को बनाया जाता है। वरिष्ठ नेता सांस्कृतिक संघर्ष के उपाय की ओर इशारा करते हुए फरमाते हैं कि इस हथकंडे से संघर्ष पश्चिम की ओर से थोपी गई संस्कृति से मुंह मोड़े बगैर मुमकिन नहीं है। बुद्धिजीवियों को चाहिए कि वे पश्चिम की संस्कृति की छानबीन करें, उसके अच्छे तत्व को ले लें और बुरे व विनाशकारी तत्वों को इस्लामी समाज की सोच व व्यवहार से निकाल बाहर करें। इस विशाल पैमाने पर छानबीन का मानदंड इस्लामी संस्कृति और पवित्र कुरान और पैगंबर इस्लाम के आचरण को करार दिया जाए।
वरिष्ठ नेता आत्मिक शक्ति व आत्मविश्वास की भावना की मजबूती को सांस्कृतिक संघर्ष के लिए जरूरी बताते हुए फरमाते हैं, जिस समाज का मनोबल ऊंचा होता है, दुश्मन उससे धौंस व धमकी की जबान में बात नहीं कर सकता। दुनिया में धौंस व धमकी देने वाले जब किसी व्यक्ति, गुट या राष्ट्र को झुकाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस व्यक्ति, गुट या राष्ट्र के मनोबल को तोड़ देते हैं, उनमें क्षमता व दृढ़ता की भावना खत्म कर देते हैं। जब तक कोई गुट या राष्ट्र खुद को शक्तिशाली व सक्षम समझता है और उसका मनोबल ऊंचा रहता है, उस वक्त तक कोई भी उस गुट या राष्ट्र को हरा नहीं सकता। न बाहरी दुश्मन और न ही सुस्ती, आवारागर्दी व बेशर्मी जैसे आंतरिक दुश्मन।